ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन को अस्थायी रूप से भंग किया। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता का ग्रीष्मकालीन शिविर आज समाप्त और मॉनसून से पहले की बारिश के कारण राजधानी के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। अगले 24 घंटों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और दोषियों के लिए कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा संबंधित निकायों, उनके कामकाज और परीक्षा प्रक्रिया के सभी पहलुओं में बड़े सुधारों की दिशा में काम कर रही है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि चाहे प्रतियोगी परीक्षाएं हों या सरकारी भर्ती की प्रक्रिया, सभी में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता है।
हाल ही में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतदान दर्ज कर देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है।
कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे। बीते चार दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच को मतदान का दौर ही देखा था। भारत के दुश्मन इसको वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने देश और दुनिया में ऐसे हार ताकत को करारा जवाब दिया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि नई सरकार आगामी संसद सत्र में अपना पहला आम बजट पेश करने जा रही है। ये उसकी दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का एक प्रभावी दस्तावेज होगा और सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाएगा। अर्थव्यवस्था की मजबूती पर राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र विनिर्माण सेवाओं और कृषि को समान महत्व दे रहा है। कृषि क्षेत्र को दी गई प्राथमिकताओं पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि केंद्र ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने भारतीय शहरों को दुनिया में सर्वोत्तम रहने की जगह बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। लगभग एक घंटे के संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार की पहल पर कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में 3,80,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि असम में 27,000 करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए की गई सरकार की पहलों पर राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए काम कर रहा है और पिछले 10 वर्षों में कई समस्याओं का समाधान किया गया है।
मेरी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए 10 वर्षों में आवंटन में 4 गुना से अधिक की वृद्धि की है। सरकार इस क्षेत्र को एक्टिव पॉलिसी के तहत स्ट्रेटेजिक गेटवेज बनाने के लिए काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में हर तरह की कनेक्टिविटी का बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।
राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कुछ विपक्षी सांसदों ने नीट परीक्षा, मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर शोर शराबा किया। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने आज समाजवादी पार्टी सांसद आरके चौधरी की सेंगोल पर की गई टिप्पणी की आलोचना की। डॉ मुर्गन ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सेंगोल सभी के लिए न्याय का प्रतीक है, ये समान और निष्पक्ष सरकार को दर्शाता है। मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता सेंगोल का सम्मान नहीं करते और उनका रवैया निंदनीय है। इससे पहले समाजवादी पार्टी सांसद आरके चौधरी ने संसद में सेंगोल रखने पर सवाल उठाया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध आज राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसदों ने प्रदर्शन किया। सदन के बाहर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राम गोपाल यादव, संदीप पाठक, लालजी वर्मा और जावेद अली खान ने तख्तियों द्वारा केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। नारेबाजी के दौरान सांसदों ने मुख्यमंत्री केजरीवाल की रिहाई की भी मांग की। मीडिया से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति को अपने भाषण में केंद्र सरकार की कमियों को भी रेखांकित करना चाहिए था।
इस देश में 10 साल से आपातकाल लगा हुआ है, इस बात का जिक्र क्यों नहीं है? ये जिक्र करना चाहिए ना कि किस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। आपने दो दो मुख्यमंत्रियों को पकड़ के जेल में डाल दिया। हेमंत सोरेन जेल में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, शिक्षा मंत्री जेल में है, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है। मिसयूज ऑफ सीबीआई ईडी पूरे देश में खुलेआम हो रहा है और क्या होता आपातकाल।
आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का निलंबन आज सदन से समाप्त हो गया। एक सोशल मीडिया में पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि लगभग एक साल के बाद आज उन्हें संसद में हिस्सा लेने की अनुमति मिली है। उन्होंने इसके लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का आभार जताया। आप नेता ने इस निर्णय के लिए सदन के प्रिविलेज कमेटी के सभापति और सभी सदस्यों को भी अपना धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन डीडीसीडी को अस्थायी रूप से भंग कर दिया है। इसके साथ ही श्री सक्सेना ने इसके गैर आधिकारिक सदस्यों को भी हटाने के आदेश दिए हैं। इन सभी आदेशों को तब तक प्रभावी माना जाएगा जब तक नियमों के अनुसार इसके उपाध्यक्ष और सदस्य आदि के रूप में डोमेन एक्सपर्ट की स्क्रीनिंग और चयन के लिए एक तंत्र को विकसित नहीं कर लिया जाता। अपने निर्णय पर उपराज्यपाल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने डीडीसीडी का गठन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया था और इस आयोग के पास कोई काम नहीं था। इसके अलावा श्री सक्सेना ने डीडीसीडी की चयन प्रक्रिया पर अपारदर्शिता का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए कोई स्क्रीनिंग मापदंड नहीं अपनाए गए थे और इससे सरकारी राजस्व पर बोझ पड़ रहा था। वहीं दिल्ली सरकार ने कमीशन के भंग होने के निर्णय की तीखी आलोचना की है। शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली डायलॉग कमीशन का भंग करना निचले स्तर की राजनीति है। वहीं दूसरी ओर उपराज्यपाल के इस निर्णय का भाजपा ने स्वागत किया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सरकार पर आरोप लगाया कि कमीशन में अपने अपने कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी थी लेकिन सरकार ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया। श्री सचदेवा ने आशा जताई कि उपराज्यपाल उद्देश्य के अनुरूप विशेषज्ञ के साथ कमीशन का शीघ्र पुनर्गठन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि श्री पित्रोदा को फिर से नियुक्त करना उनके द्वारा अब तक कही गई बातों का समर्थन दर्शाता है। श्री पित्रोदा ने अपनी कुछ टिप्पणियों के कारण पिछले महीने पद से इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता का ग्रीष्मकालीन शिविर आज समाप्त हो गया। नई दिल्ली स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित समापन समारोह में दिल्ली पुलिस ने विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि यातायात प्रबंधन प्रभाग के विशेष पुलिस आयुक्त एचजीएस धालीवाल ने छात्रों को सड़क सुरक्षा के दूत की भूमिका निभाने और अपने माता पिता, रिश्तेदारों और सहकर्मी समूहों के बीच सड़क सुरक्षा का संदेश फैलाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्रों से सड़क उल्लंघनों को ट्रैफिक सेंटिनेंटल ऐप के माध्यम से भेजकर ट्रैफिक पुलिस की मदद करने का भी आह्वान किया।
मैं ये कहना चाहूंगा कि रोड सेफ्टी जो है वो हमेशा एक कोलेबोरेटिव एफर्ट रहता है। सिर्फ ट्रैफिक पुलिस उसमें कोई अकेले मिलके बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती जब तक कि हर सिटीजन, हर पार्टिसिपेंट उसमें अपना फर्ज ना निभाए। और उसी एंगल से जो हमारा ये रोड सेफ्टी का फोकस रहता है और समर कैंप का फोकस रहता है, वो सबसे ज्यादा जो हमारी मजबूत कड़ी है फ्यूचर के लिए, वो आप तमाम बच्चे हो।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने आज सिंगल प्लास्टिक यूज के खिलाफ राजधानी के कई क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया। अपने अभियान के माध्यम से एनडीएमसी ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध और इसके विकल्प पर बात की। इसके अलावा परिषद ने कूड़े के स्रोत पर निपटारे और अपशिष्ट पृथककरण के महत्व तथा वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण पर जागरूकता के लिए लोगों को उनके साथ चर्चा में शामिल किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज गुरुग्राम में घर घर से कूड़ा उठाने के लिए 50 नए इलेक्ट्रिक वाहनों को झंडी दिखाई। इनके साथ गुरुग्राम में ऐसे वाहनों की संख्या अब 500 से अधिक हो गई है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गुरुग्राम नगर निगम कचरे से होने वाले प्रदूषण कम करने के अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल कर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन कैरी बैग मुक्त गुरुग्राम अभियान के तहत कपड़े के बैग की वेंडिंग मशीन का भी उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से छुट्टी दे दी गई है। वृद्धावस्था संबंधी कारणों के बाद उन्हें कल रात भर्ती कराया गया था। 96 वर्षीय नेता को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात का ये पहला कार्यक्रम होगा। इसे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। आकाशवाणी पर हिन्दी में कार्यक्रम के प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। दिन में आज बादल छाए रहे और बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहते हुए 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा। एक रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को अपनाए गए एक प्रस्ताव में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अपने
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा शहर के कुछ क्षेत्रों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। रेल यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए उत्तर रेलवे ने आज 04075 और 04076 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो कटरा नई दिल्ली आरक्षित त्यौहार स्पेशल ट्रेन की घोषणा की। इसके अलावा उत्तर रेलवे ने 18 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों की सेवा की अवधि बढ़ाने की भी घोषणा की है। इनमें आसनसोल आनंद विहार टर्मिनल आसनसोल ट्रेन और मालदा टाउन नई दिल्ली मालदा टाउन ट्रेन और पटना आनंद विहार टर्मिनल पटना ट्रेन शामिल है। उत्तर रेलवे ने यह भी सूचित किया है कि गोंडा बुडवल खंड की तीसरी लाइन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण दिल्ली से आने जाने वाली कई ट्रेनें अस्थायी रूप से रद्द, परिवर्तित, पुनर्निर्धारित और विनियमित रहेंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन को अस्थायी रूप से भंग किया। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता का ग्रीष्मकालीन शिविर आज समाप्त। मॉनसून से पहले की बारिश से राजधानी के लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। अगले 24 घंटों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।